الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے راستے کی اتباع کرو جو میری طرف جھکائے رکھتا ہے. اس آدمی کے راستے کی اتباع کرو جو میری طرف جھکائے رکھتا ہے. اور ایک دوسری جگہ فرمایا والا کر کنو الا الذین ظلموا فتمسکم النار. ایسا مت کرنا کہ ان لوگوں کی طرف جھک جاؤ, ان لوگوں کی طرف میلان اختیار کرو جو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ایسا کرو گے تو تمہیں آگ پکڑ لے گی, آگ یعنی جہنم کی آگ پکڑ لے گی. یہ فرمایا کہ جو میری طرف رجحان رکھتا ہے اس کے راستے کی اتباع کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور اس قول سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. فرمایا کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن. جس چیز کو اللہ والے اچھا سمجھتے ہیں اللہ کے یہاں بھی وہی اچھی ہو جاتی ہے. یعنی جو اللہ کی طرح جھکائے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرح میلان رکھتے ہیں, رجحان رکھتے ہیں, ان کی نظر صحیح ہو جاتی ہے, ان کا دل و دماغ درست ہو جاتا ہے, ان کی سوچ صحیح ہو جاتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بس ان کی سوچ اس حد تک صحیح ہوتی ہے اور ان کا دل و دماغ اس حد تک درست ہو جاتا ہے کہ فرمایا جس چیز کو یہ پسند کریں بس وہ چیز اللہ کے یہاں بھی اچھی ہے. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شیخ کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. اور یہ قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی بہت بڑے بزرگ ہیں, یہاں تک کہ حقیق الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب خانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں مولانا وسیع احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اور اگر یہ اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت, اتنا علم دیا ہے کہ اور اتنا عمل دیا ہے, اتنا تقویٰ ہے اور اتنا علم ہے کہ اگر یہ اجتہاد کا دعویٰ کر لیتے تو اس کو نباہ ہی لیتے, اس کو نباہ لیتے. مگر کیونکہ اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو چکا اس لیے ساری زندگی انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہو کر زندگی گزاری. اس مقام کے آدمی ہیں. انہوں نے اپنے شیخ کو خط لکھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت آپ کے پاس آنے کی برکت سے اور آپ کو مت لکھانا تعلق قائم کرنے کی برکت سے میرے اوپر اللہ کے تین انعامات ہوئے جو میں نے دیکھ لیے, جن کا مشاہدہ میں نے کیا. راجا صاحب کو پھر یاد آ گیا, پہلے وہ سمجھ فرماتے ہیں کہ baya agnasan sayo bayato tiro mga kardo. Baya agnasan sayo bayato tiro mga kardo. Agar sayo na sarag do, gamito asma kardo. Agar sayo na sarag do, gamito asma kardo. Liyo na lang sa lalaki, huwag ka sa karama niyo.
मत हो जान मेरे हाथ में बराबर होगा।
मैंने व्यास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, आदमी उस वक्त तक कायदे नस्बत हो ही नहीं सकता जब तक वो मद से जन उसके हक में बराबर ना हो जाए। उस वक्त तक वो अल्लाह वाला नहीं बन सकता जब तक उसकी तारीफ की जाए तो उससे कोई फर्क ना पड़े, मजम्मत की जाए तो उससे, जब उसकी तारीफ की जाती है तो वो अल्लाह की तरफ उसका ध्यान जाता है कि अल्लाह मेरा क्या है, मैं क्या हूँ और मेरा क्या है, सब कुछ आप हैं और सब कुछ आप ही की अनायत है, आपकी शक्त है, आपकी रहमत है, आप हैं आप सब कुछ हैं, गैर है गैर गैर कुछ भी नहीं। हमारे मोहन नजम हसन नगरानी रहमत हजरत बाबा नजम हसन नगरानी रहमत बहुत प्यारा शेरा उनका, आप हैं आप सब कुछ हैं, गैर है गैर गैर कुछ भी नहीं। तो ये हाल होता है, तो मद से जन बराबर हो गए। यही बात लिखी मैंने उसी रहमत गंगोई रहमत अल्लाह। दूसरी बात ये फरमाई कि नफूस का तहरूज उठ गया, मतलब ये है कि एक हदीस में कोई मजमून बयान किया गया, दूसरी हदीस में उसके बगाहिर उसके खिलाफ होता है, नफूस में तहरूज होता है, बाज़ात होता है ऐसा, कुरान की आयतों में भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उसका बिल्कुल उलट है, उसकी तस्वीर होती है, तस्वीर होती है, उसको समझ में आता है कि हाँ नहीं ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, ये आयत है तहरूज नहीं है। तो फरमाया नफूस का तहरूज उठ गया, यानी हदीस में कोई मजमून एक दूसरी हदीस में बिल्कुल उलट मजमून है, कोई एक हदीस में एक मजमून दूसरी हदीस में दूसरा मजमून उसको बिल्कुल उलट है, वो समझ में आ जाता है, तारीफ उठ गया। मद से जन बराबर हो गए, नफूस का तारीफ उठ गया, तो यह फायदा शेख के पास जाने का, किसी की जहन में जा रही है बहरहाल ये फायदा है और अल्लाह के पास जाने का, इखलास के साथ उनसे इस्तेफादा करने का, महरूम नहीं रहता कोई। इसलिए फरमाया है सभी सभी वन अनादा इलाही, जो मेरी तरह रुझान और खाली तौबत उठाना आना जाना ये काफी नहीं है। बाद लोगों ने इसको समझा कि ये बस चले गए आ गए, मजलिस में चले गए आ गए, ये तो एक बड़ा मामूल सा बन गया, ये काफी नहीं है। देखिए सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खिताब फरमाया, सहाबा को, यदि सहाबा हो तो उनको सहाबा कहे, कहा ही इसी वजह से जाता है जो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सहबत उठाने वाले, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाए कि वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा ولكن الله يزكي من يشاء، اے صحابہ تم میں سے کسی ایک کا کبھی بھی تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کوئی پاک صاف نہیں ہو سکتا تھا، ہمارا نہیں بن سکتا تھا، حضور کی صحبت اٹھانے کے باوجود ان سے یہ کہا جا رہا ہے تم میں سے کسی ایک کا تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا، कोई एक साथ साथ नहीं हो सकता था और कभी नहीं हो सकता था, अबादा का लफ्ज है, कभी भी नहीं हो सकता था, अगर तीन चीजें ना होती हैं, अल्लाह का फजल वलिल्लाह फजलुल्लाह अलैकुम रहमतुहु, और अल्लाह की रहमत ना होती तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फजल ना होता, और तीसरी चीज फरमाई कि अल्लाह की मसीयत ना होती, वलाकिन अल्लाह यज़की मन यशा, तो मसीयत पता चली अल्लाह की मसीयत, मसीयत कहते चाह लेने को, तो अल्लाह जब तक इरादा ना फरमाए किसी का तो कितनी मेहनत कर ले, अल्लाह ने इरादा नहीं किया तो उसको अपना बनाना है, अब तक इरादा नहीं हुआ अल्लाह का कुछ भी कर ले नहीं हो सकता। तो ये तीन चीजें हैं जो सहाबा को बताई बताई देंगे, ये तीन चीजें हुई हैं तुम्हारे ऊपर, तब कहीं जाके तुम कुछ बने हो रजी अल्लाह आनंद रजी। जब अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, अल्लाह की रहमत ना होती, और अल्लाह ने तुम्हारे बारे में ये फैसला ना किया होता कि उनको अपना बनाना है, तो तुम सोहबत उठाने, और वो सोहबत भी किसकी हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वाकई ऐसे हुआ, एक सहाबी उनके बारे में बहुत बहादुरी से लड़े, और जिला से एक जगह वो मुर्दा पाए गए और जख्म खून आलूद पाए गए, तो सहाबा ने आकर तारीफ की, वो बड़ी बहादुरी से वो लड़े हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ नहीं फरमाई। और कुछ ऐसा इजहार किया कि इनकी कुर्बानी कबूल नहीं, इतने एक सहाबी ने आकर बताया कि हाँ मैंने इनको देखा था, ये जख्मी होने के बाद इनसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई, इन्होंने तलवार अपनी जमीन में डाली और उसके ऊपर आर पार हो गया, खुद ही किए। और वजह यह हुई थी कि माल गनीमत की तकसीम से पहले माल गनीमत में से उन्होंने जूती के कस्मे वो ले लिए थे। ये एक किस्म की गलती थी, खयानत थी, गलती थी, कोताही थी, और इसका ये बदा लिया। तो ये अल्लाह से सुबहान व तआला ने दिखाया ही है कि अगर अल्लाह का फजल ना हो, अल्लाह की रहमत ना हो, अल्लाह की मसीहत ना हो, तो हुजूर की सोबत के बावजूद भी तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तो भाई ये आना जाना काफी नहीं, अल्लाह से हम ये दुआ मांगे, अल्लाह ये हम आते जाते तो हैं, अपना फजल भी फरमाइए, रहमत भी फरमाइए, और हमारे बारे में फैसला भी फरमाइए, जो इरादा फरमा लीजिए, जो अपना बनाने का इरादा फरमा लीजिए। एक दफा लाहौर में मैं हजरत वाला रहमत के पाँव दबा रहा था, उससे एक दिन पहले हजरत ने यही मजमून अगर को सुना मैंने, मैंने ये आयत तो बहुत दफा पढ़ी थी, लेकिन जब ये हजरत से सुना तो मेरे को रोंगटे खड़े हो गए, ये क्या मजमून है। तो अगले दिन मैं अवध के पाँव बजा रहा था, मैंने कहा अवध ये जो आपने कल मजमून बयान फरमाया था, मैंने उसकी एक दुआ बनाई है अरबी में। अवध ने फरमाया तुमने क्या दुआ बनाई है अरबी में। मैंने कहा अवध अल्लाह जखीनी लिखा लिखा है रहमतिका है नसीहत, छोटी सी दुआ मैंने सुनाई अवध, अल्लाह मेरा पक्या फरमा दी, यानी पाक साफ फरमा दीजिए, पाक साफ बनाकर अपना बना लीजिए। पाक साफ करने से मुराद रूहानी बीमारियों से पाक साफ और रूहानी गंदगियों से पाक साफ कर लेना, तो अल्लाह ने वकीनी विफा बनी रहमतिक और नसीहत, अपने फजल के जरिए से, अपनी रहमत के जरिए से, और अपने इरादे के जरिए से, अपने चाह लेने के जरिए से मुझे मेरा तस्किया फरमा दीजिए और अपना बना लीजिए। तो बहुत खुशी है, प्लीज आप इतनी हौसला अफजाई फरमाई, बहुत खुशी है। दो दफा मुझे शाबाश शाबाश, بس هاي وملحوظ وعباتها ما الله مسؤول لك عن كلامة الله عليه وسلم عدده شاكي دعا مل جي سمجو الله تفضل هيا شاكي دعا مل جي سمجو الله تفضل هيا سمعنا غير الله تفضل هيا الحمد لله اللي كيف هم كيف هتعي جي فضل رحمة عاد مسجد مداخلته اللهم افتح لي ابواب رحمتك عن مسجد مدلته اللهم اني اسالك من فضلك بكار اعطي وقت عبد رحمت تلوائي داري مانجا اسواته جب عبد بحر مدلوك اللهم اني اسالك من فضلك اعطي ما عبد فضل مانتا وده رحمت ये दो चीजें हैं अगर ये दो चीजें ना जब ये दो चीजें हो गई तीसरी हो भी जाएगी इंशाल्लाह खुद ही हो जाएगी अल्लाह चाह भी लेंगे इरादा भी हो जाएगा लेकिन बहरहाल हमें मांगना चाहिए भी मांग तीसरी दुआ भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमारे बारे में इरादा करवा लीजिए क्या नजर मुझ पर में डाली जाएगी क्या मेरी फरियाद खाली जाएगी आ जाएगी ना मेरी वायदा कुछ है फरियाद ऐसा हो जाए तो ये तीन चीजें मांगनी है एक सोबत में आना जाना मजालिस में आना जाना गाँव गाँव और नंबर दो ये तीन दुआएं मांगना फजल की रहमत की और नसीहत की चाह लेने की अल्लाह की ताहत की और तीसरी चीज जिसके बगैर हमारा काम नहीं बन सकता वो इत्तला है इत्तला है इत्तला करना अपने अहवाल की और इत्तला करना मशवरों की अपने अहवाल की इत्तला करना कि मैं फिलहाल बीमारी में मुबतला हूँ फिलहाल चीज मुझसे नहीं हो रही नमाज में सुस्ती हो रही है या जबान की हिफाजत नहीं होती आंखों की हिफाजत नहीं होती शरई परवाह मुझसे नहीं हो पा रहा हमने आज ये समझाया अल्लाह वालों को या उनके गुलामों को कि कारोबार चल नहीं रहा तो उनको दुआ करवा लो नौकरी नहीं मिल रही तो दुआ करवा लो औलाद नहीं हो रही तो दुआ करवा लो औलाद हो गई वो सता रही है तो दिल ना फरमान है तो दुआ करवा लो बस ये चीज रह गई तावीज चाहिए तो तावीज ले लो मैं ये भी कह रहा कि ये नहीं करवाना चाहिए ठीक है ये अल्लाह की शक्कत है उनकी उनकी नवाजिश है कि वो ऐसा कर लेते हैं लेकिन ये उनका असल काम नहीं है हमने तो साधे साथ फरमाते हैं साहे जो समझता है कि भीख मंगने को हमने भी बचपन में सुना है अल्लाह वाला आ गया तो भीख मांगने वाले उनको अल्लाह वाला कहते हैं ये अल्लाह वाले साहे जो समझता है कि भीख मंगने को तूने देखी ही अभी सूरत शाहाना नहीं तूने किसी अल्लाह वाले की सूरत ही नहीं देखी तो उनको भीख मांगने वालों को अल्लाह वाला कह रहे हैं साहिब जो हो सकता है उनमें भी कोई हो अल्लाह वाला इनकार नहीं लेकिन हमने ये क्या ये यही मसूम समझा है तो साहिब जो समझता है तू भीख मांगने को तूने देखी ही अभी सूरत शाहाना नहीं तो भाई ये तीन काम करने पड़ेंगे नंबर एक सोहबत में आना जाना फिर ये तीन दुआएं मांगना जो इस आयत में मनकूल है वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा अल्लाह का फजल अल्लाह की रहमत और अल्लाह का चाह लेना अल्लाह का इरादा हमारे बारे में हो जाए कि अल्लाह मेरे बारे में इरादा फरमा लीजिए अपना बनाने का ये तीन चीजें और नंबर एक और नंबर तीन इत्तलाए अहवाल और इत्तलाए मसाइल एक अर्था हो गया अहलुल्लाह के पास आते जाते हुए शरई पर्दा नहीं है खाला जात बहना में जात बहने और अपनी भाभी से पर्दा नहीं है एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहम अल मौत ऐसी झंझोरने वाली हदीस है ये तो दो लल्फाजों के रूप में अलहम अल मौत देवर से मौत है मौत मौत को कैसा घबराता है आदमी, मौत से किस तरह लाभक कार्य होती है आदमी को। तो फरमाया भाभियों को तो अपने देवर से ऐसा दूर रहना चाहिए जैसे मौत को लाशत आती है, देवर को मौत है मौत। और अब एक फैशन है देवर से बातचीत करना, हंसी मजाक करना, एक फैशन बन चुका। जब ऐसा है तो फिर नतायज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। घर घर में उससे लड़ाइयाँ होंगी, जो फसादात और जो खराबियां जन्म लेंगी। अल्लाह अल्लाफी। और ये नतीजा है इस बात का कि हमने अव्वल तो किसी अल्लाह वाले की सोबत ही नहीं उठाई, हमें कोई ध्यान ही नहीं इस बात का। नंबर दो, अगर सोबत उठाते हैं जाते हैं किसी माहौल में तो हमने इतना इतनाई नहीं की कि भाई ये हमारे अंदर ये बीमारी है, सही पर्दा नहीं हो रहा, बताइए इलाज बता दीजिए, इसकी कोई परवाह नहीं। बस चल रहा है, रूटीन चल रहा है। हमने आज जापान में दीन के लिए हमारे लिए रूटीन बना दिया। मैं रूटीन चल रहा तुम जाते रहो ठीक है, भाई जाने से जो जो फायदे मुरक्कब होने चाहिए वो नहीं हो रहा, हमारी इफ्फत में नजर जाती। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। मुफ्ती अहमद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत अजीब आदमी थे। उन्होंने एक दफा फरमाया कि देखो जब एक मुसाफिर ट्रेन में बैठता है या किसी बस में बैठता है कहीं जाने के लिए, जहाँ उसको जाना है उसकी मंजिल के जो मारूफ हिस्सा देखता है खिड़की से बाहर, अब कौन सा स्टैंड आया ट्रेन में तो देखता कौन सा स्टेशन आया, जो उसके रास्ते के मारूफ स्टेशन आ रहे होते हैं तो वो मुतमिन हो जाता है कि मैं मंजिल की तरफ जा रहा हूँ, मेरा रास्ता सही है, रुख सही है, मेरी सोच सही है। और खुदा ना खास्ता अगर वो मारूफ स्टॉप नहीं आ रहे, वो मारूफ स्टेशन नहीं आ रहे, अगर बस में जा रहा है तो स्टॉप नहीं आ रहा, वो मारूफ स्टॉप जो आने चाहिए वो नहीं आ रहे, और ट्रेन में जा रहा है तो मारूफ स्टेशन नहीं आ रहे, तो वो कहते हैं वो ये तो मैं किसी गलत जगह पर बैठ गया। और जैसे जैसे वो ट्रेन या बस आगे बढ़ती रहती है उसकी घबराहट में इजाफा होता है, घबरा जाता है। और जो सही बस में या सही ट्रेन में बैठे हुए मारूफ स्टेशन या स्टॉप आ रहे हैं तो जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है या बस आगे बढ़ती है उसके इत्मीनान में इजाफा होता है, यहाँ नहीं मैं ठीक जा रहा हूँ, अब इतना वक्त रह गया इंशाल्लाह मैं इतने वक्त में पहुँच जाऊँगा। बस यही फर्क है, याद रखिएगा यही फर्क है। जो आज डिप्रेशन टेंशन परेशानियों में मुबतला है उनका रुख सही नहीं है, उनका रुख सही नहीं है। ज्यादा परेशानियां बैठी जाती हैं क्योंकि रुख सही नहीं है, ईमान होते हुए रुख सही नहीं है, परेशानियां बढ़ रही हैं। हर दिन कोई नई टेंशन, कोई नई परेशानी, नई मुश्किल, जिसकी वजह से बेचैनी और आजमाइश बढ़ती जा रही है। और अल्लाह के ऊपर इनसे ज्यादा मसाए जाते हैं आजमाइश आती है, मगर इनका रिस्क सही होता तो मुतमइन रहते। वो कहते हैं अल्लाह ताला हाकिम भी है, हकीम भी है, खाली फरमाता मैं तो खाली दो नाम, कोई चीज तबीयत के खिलाफ पेश आए मैं सिर्फ अल्लाह को देखे हकीम उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत क्या करते थे मैं वो बता रहा हूँ। मुश्किल के वक्त में आजमाई मुसीबत के वक्त में हकीम उम्मत का क्या नाम मिलता, अगर मैं अल्लाह के सिर्फ दो नाम पूछ लेता हूँ मेरी परेशानी मुसीबत सब खत्म हो जाती है। वो क्या है दो नाम, हाकिम और हकीम। फरमाए ये दो नाम मैं अल्लाह को सोच लेता हूँ, हाकिम और हकीम। हाकिम होने की हैसियत से अल्लाह आपको इख्तियार है, हम आपके महकूम है, आप हाकिम है, जैसे आप चाहें हमें रखें, अच्छे हालात में रखें या आजमाइश के हालात में रखें, आपको इख्तियार है, आप हाकिम है, हम महकूम है। और हकीम होने की हैसियत से आपका कोई अमल हिकमत से खाली नहीं होगा, अगर आपने हमको मुसीबत में रखा है तो इसमें भी कोई ना कोई हिकमत होगी, कोई हमारा ही फायदा होगा। हाकिम और हकीम दो नाम सोच लेता बस सब खत्म। और मौला साहब आगे राणा साहब फरमाते थे, खेल होती है मोहब्बत में यकीनन हजरत, दिल में आप जो इस पर भी फसा होते हैं, खेल छाड़ का महबूब को हक हासिल है तो एक आध झूठा आके मार दिया, चिट्ठी ले ली, तो ये कोई ये हरकतों को अनजान आदमी आके करे तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन यही हरकतों को महबूब बेतकल्लुक दोष करे तो आपको खुशी होगी, क्योंकि मोहब्बत का ताल्लुक है। इसलिए अल्लाह भी चिट्ठियाँ लेते हैं, झूठे मार लेते हैं, चिट्ठियाँ लोग क्या है وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ। तो कभी हम तुम्हें खौफ का झूठा मार देंगे और कभी भूख की चिट्ठी ले लेंगे, वल्अंफुस वस्समारात, और कभी जाने का नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें साथ छोड़ के तुम्हारा अगली दुनिया के आखिरत से चले जाएंगे। वस्समारात, ये तुम्हारी औलाद एक तस्वीर की गई है औलाद, और एक तस्वीर वही है मारूफ जो समारात से फल का नुकसान होगा, कोई खेती वगैरह का काम है जो खेती गायब हो गई, इससे भी हम तुम्हें आजमाएंगे। ये चुटकियाँ है, ये चुटकियाँ हैं जो अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। जरूर हबीब मिसल कबीब, महबूब की मार ऐसी है जैसे किसमिस। एक शायर ने कहा है, न शहद नसीब दुश्मन, और एक जगह अल्लाह एक शायर ने अल्लाह की तरफ से बयान किया, शिकायत मानी हक कहते हैं उसको, ना परवरेन दुश्मन और मानी किसेन दोस्त, तूने तूने तेरा नायक कसेरा दर पगाए ना, हम अपने दुश्मनों की आय भगत करते हैं और अपने दोस्तों को खूब मुसीबत में रखते हैं। देख लीजिए हुजूर ने फरमाया, असद अल्लाह की बला है ना लंबिया सम्मल अंसल फल अंसल, सबसे ज्यादा मुसीबतों में बलाओं में आजमाइशों में अंबिया को रखा जाता है, उसके बाद उनसे जो जितना करीब होगा अंबिया को जो जितना करीब होगा उसको उतनी ज्यादा मुसीबतों आजमाइशों में रखा जाएगा। तो वही मैं परवरे दुश्मन और मानी किसान दोस्त, हम अपने दोस्तों को खूब उनकी उनको मुसीबतों में आजमाइशों में रखते हैं और दोस्तों को खूब मजे देते हैं, तो मजे उड़ाए तीनों तेरा नायक कसेरा दर पगाए ना, किसी को हमारे फैसले में कोई तीनों तेरा करने का हाथ हासिल नहीं, जो हम चाहे करें। और दूसरे एक शायर ने कहा कि शहद नसीब दुश्मन के शहद हवा के तहत सरे दोस्तों सलामत के तू समझा आजमाई, दुश्मन का भी नसीब ना हो ये बात तो दुश्मन का भी नसीब ना हो कि वो तेरी तलवार से हलाक हो, अरे तुझे दोस्तों का सर सलामत है, हम हमारे ऊपर अपनी तलवार चला, सरे दोस्तों सलामत के तू समझा आजमाई, अपना खंजर हमारे हमारी गर्दन पे चला, ये दुश्मन का नसीब ना हो तो तेरे हाथों से समझो दुश्मनों के गर्दनों से चले, हमारी गर्दनें किस लिए, न समझ नसीब दुश्मन के समझ हला के कह तेरी तरफ से तेरी तलवार से दुश्मन का नसीब ना हो जो वो हलाते हमारे सर सलामत है, जब तक हमारे सर सलामत है। मोहब्बत की इंतहा है, ये तीन काम हम करें, एक तो सोहबत में आना जाना और दूसरा अल्लाह ताला से ये तीन दुआएं मांगना, फजल रहमत और अल्लाह का इरादा, नंबर तीन इत्तला और अहवाल और इत्तला मशवरा, अहवाल अपने हालात की इत्तला करना, मशवरों की जान लड़ाकर इत्तला करना, चाइना की हिफाजत नहीं होती, खूब इन्हें बस लाख रुपए जो लोगों ने वो सिस्टम लिए हुए म्यूजिक सिस्टम लाख रुपए और भी उससे भी महंगे। जरा आप ये तो देखो कि किस तरह पैसा खर्च हो रहा है और कितना पैसा खर्च हो रहा है। एक साहब ने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका मदरसा बन गया मदरसे मस्जिद भी थी उसमें मदरसे में उस मस्जिद का वो मीनार बनवा रहे थे। उन्होंने एक साहब को वो बड़े दुनियावी अखबार से कुछ हैसियत थे शाहिद हैसियत थे उनको ये दिखाया कि ये मीनार बन गया। तो उस शख्स ने बदनसीब उन्हें हुआ तो बदनसीब कहेंगे उसने वो पहले 10 लाख रुपए महीना देता था उनके मदरसे में वो दोनों भी छोड़ दिए। अच्छा ये मेरा हम लोगों का पैसा इससे लग रहा है मीनार से तो अल्लाह के बंदे तुम्हारा पैसा उनके घर पे लग रहा है उनकी गाड़ी आ रही है। वो अल्लाह के घर का मीनार जो एक अजमत का निशान है दीन की उसके लिए तुमसे कह रहा है कि ये मीनार बन रहा है। उन्होंने कोई अपनी जेब में रखने के लिए तो पैसे नहीं मांगे थे। लोगों की जहनीत देखें 10-10 लाख रुपए 15-15 लाख रुपए के म्यूजिक के सिस्टम वो खरीदने में वहाँ नहीं शैतान कहता कि ये क्या हो रहा है यहाँ मस्जिद का मीना वो हो हमारा पैसा इससे लगेगा ये जाया हुआ आपका पैसा या दीन की अजमत को जाहिर करने के काम आ रहे हैं। इन लोगों के बुरे अमाल उनके लिए मुजयन करके खूबसूरत बना के पेश कर दिए गए ये भी एक आजाद की सूरत होती है। तो ये तीन काम करना ये है वक्तव्य सबीला में नाना इलाही कि ऐसे आदमी की इत्तेबा करो उस आदमी के रास्ते पर चलो जो मेरी तरफ झुकाव रखता है उसके रास्ते पर चलो उसके रास्ते की इत्तेबा ये तीन काम करना है ये तीन काम करने जरूरी है वरना याद रखो कोई फायदा नहीं होगा। जैसे हम आते वैसे आते रहेंगे एक अर्सा गुजर जाएगा कहेंगे हाँ उनके पास आने के कारण कोई फायदा नहीं होगा और चौथा काम और भी है काम और याद आया कि बताए हुए जिक्र मौत के बताए हुए जो मामूलात हैं उनको पाबंदी से करना उनको पाबंदी से करना ये चार काम है। और जहां आप देख लें कि ये इनमें से किसी काम में कमी आएगी गुनाह होने शुरू हो जाएंगे नाफरमानियां शुरू हो जाएंगी और आप जहाँ गुनाह और नाफरमानियाँ हो रही हैं और हम जा रहे हैं अल्लाह वालों के पास इन चारों में से कोई एक चीज़ की कमी है जहाँ आप देखेंगे किसी एक चीज़ की कमी होगी या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं व्यवस्था बताया हुआ जिक्र तो ऐसा है हकीम उल उम्मत ने उसकी मिसाल दी है फरमाया आज मैं अगर आप सर्दियों के जमाने में वो गाँव देहात वाले उनके शहर में रहते हैं हमें पता नहीं चलता गाँव देहात में गाय आदमी फिर पता चलता है मैं आज जलाकर उसके पास बैठते हैं लोग अंगारों के पास बैठे रहते हैं खेत हासिल करते हैं तपीस हासिल करते हैं ताकि सर्दी जरा कम लगे सर्दी का एहसास कम हो। तो फरमाया सांस की सोहबत में आकर बैठ जाना ये ऐसा है जैसे आप सर्दी में अंगारों के पास बैठ गए ये तो ऐसा है। अब अगर जहाँ अब आपके पास से हटेंगे तो सर्दी लगेगी अब क्या तरीका है यदि शेख के पास से हटेंगे तो मच्छर शैतान घेरेंगे अब क्या तरीका है बचने का। फरमाया बचने का तरीका यह है कि आज अंगारों के पास बैठे तो सर्दी की कमी महसूस हुई फिर तकलीफ लगी सर्दी से हिफाजत हुई अब इस यहाँ से हटने के बाद तरीका यह है कि आज फिर भी आपको तकलीफ हासिल होती रहे तो इसका तरीका यह है कि कुछ अंगारे अपने साथ ले लेते हैं अंगारे अपने साथ ले लें चलो तो उससे यह होगा कि तकलीफ हासिल होती रहेगी। फरमाया ये अंगारे साथ लेकर चलना ताकि तकलीफ ये सर्दी की उसकी उससे हिफाजत रहे यह है शेख का बताया हुआ जिक्र। पाबंदी से करना, शेख ने बताया हुआ मामूलात पाबंदी से करना, इसकी मिसाल ऐसी है। तो शेख की सोबत में तो आदमी कम घंटे रहेगा, कुछ देर रहेगा, और बाकी आई है और जो दिन का वक्त है और कई दिन वो शेख के पास कितने दिन आ जाएगा, हफ्ते में दो दिन तीन दिन, बाकी दिन का अपनी दुनिया में मशगूल रहेगा। इसका तरीका क्या है कि वो गुनाहों से बचता रहे, नफ्स शैतान के मकर फरेब से बचता रहे। इसका तरीका यह है कि शेख का बताया हुआ अगर जिक्र और शेख के बताए हुए मामूलात पाबंदी से कर रहा है तो इंशाल्लाह उसकी हिफाजत रहेगी नफ्स शैतान से। तो ये चार काम है, यह वक्त भी सबीला में नाराज आई गई इतना करो उस शख्स के रास्ते की जो मेरी तरफ झुकाए रखता है, अल्लाह जो अल्लाह की तरफ झुकाए रखते हैं, नफ्स और शैतान की तरफ झुकाए नहीं रखते। जिससे मौला रूम ने फरमाया यार गालिब जी के पास गालिब सही, यार मगलूबा नफ़ ही ए गरीब। सरकस आदमी रही फरमाया मौला रूम ने कि ए सरकस आदमी क्या यार गालिब जी के पास गालिब सही, तुम ऐसा करो कि गालिब दोस्त को तलाश करो, मुराद गालिब से यह जो अपने नफ्स और शैतान पे गालिब आ चुका है, काबिज आ चुका है, उस दोस्त को तलाश करो ताकि तुम भी अपने नफ्स और शैतान पे गालिब आ जाओ। यार गालिब जी के पास गालिब सही, यार मगलूबा नफा ही ए गरीब। और ए गजी ए सरकस ऐसा मत करो कि तुम किसी मगलूब के दोस्त बन गए, उसकी यारी इख्तियार कर ली तो तुम तो मगलूब खुद ही हो जाए, वो जब मगलूब है तुम तो नहीं नहीं लेके जाएगा, तुम भी नफ्स और शैतान से मगलूब हो जाओगे। जैसे आदमी जो जैसी सोबत उठाता है वैसे ही बनता है, ये तो उसूल है, जैसी सोबत में रहता है वैसे ही बन जाता है। आदमी की तबीयत अल्लाह ने ऐसी बनाई है तो ये असर को कबूल करती है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसी तो नहीं फरमाया कि बकरी पालने वालों में तवाज़ो होती है, आज भी इंतिकारी होती है, आप देख लें आज भी गाँव देहात में जाकर। ऊंट पालने वालों में कीना होता है, ये हुजूर फरमा रहे हैं। और घोड़ा पालने वालों में तकब्बुर होता है, वजह इसकी यह है कि ऊँट में कीड़ा होता है, ऊँट में कीड़ा। हमने यहाँ मदीना मुनव्वरा से बाहर एक दफा हम गए तो ऊँट के बड़े बड़े अस्तबल बने हुए थे, वो देखने का मौका मिला। तो वो मदीना मुनव्वरा के अहबाब हमारे जो दोस्त हैं वो हमें ले गए थे, वही मदीना मुनव्वरा में रहते हैं तो वो ले गए। इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने पगड़ियाँ पहनी हुई थी वो ऊँट पालने वाले, उन्होंने मुझसे कहने लगे पता है आपको क्यों पहनी है, उन्होंने ये एकदम पकड़ता है ये, वो कभी उन्होंने पीटा होगा मारा होगा या कुछ इससे डांटा होगा तो ये पीना रखता है अपने दिल में। ऊँट मौका मिलते ही ये खोपड़ी पकड़ता है और फिर छोड़ता नहीं है जब तक कि मर ना जाए आदमी, इसलिए उससे बचने के लिए ये पहनता है। ये वो जो पालने वाले हैं उनके तरीके आते हैं सारे। तो हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें कीना होता है, इतना कीना ये रखता है ये ऊँट, इसके अंदर कुदरती तौर पर इसकी तबीयत में कीना है। तो जो इसको पालने वाले हैं उनमें भी क्योंकि साथ रहते हैं पालने की वजह से तो उनमें भी कीना आ जाता है। बकरियों में आज भी उनकी सारी तबाही तौर पर अल्लाह ने रखी है, जो उसके साथ रहते हैं उनमें भी इसका असर आ जाता है। इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलाम को तमाम को बकरियाँ चढ़वाई गई, सबको बकरियाँ चढ़वाई गई। बकरी की आदत है इधर उधर मुंह मारती है, रोवर से हटके कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, अगर उसको चढ़वाए बंदा उसको उतर जाए उसके पास वो मारे और उसका सींग टूट जाए, सर फट जाए, हड्डी टूट जाए, तो इसमें अपना ही नुकसान हुआ इसका। और अगर वो क्या ऐसा इधर उधर मुंह मार रही है, चाहे वो मुंह मार रही है वहां जाने दो, तो बकरी ही गई, यहाँ ये मैं मारना चाह रही हूँ, जाओ जाने तो मेरा क्या है, जाओ जाओ। तो उसे बकरी हुई गई हाथ से, जब मजा में कहाँ जाके निकलेगी, उसके हाथ से तो गई। दोनों सूरतों में अपना ही नुकसान है, उसको डंडा मार दिया, उसकी हड्डी पसली टूट गई, उसमें भी अपना नुकसान, और कहीं उधर 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 उसने मुँह मारा तो वहीं जाने दिया, उसने जहाँ जा रही है तो इसमें इसमें तो है ही पूरा पूरा नुकसान है। तो बकरी गई, अब उसको मार पीट से भी बचके और लेबर के अंदर साथ साथ लेबर चलना है। तो ये अंडी वाले ने सलाम से काम करवाया गया, बकरियाँ करवाई गई। शायद इसमें ये भी लिखा था कि इसमें आज भी इनकी सारी है, उसकी उसकी वजह से ये आ गए, आज भी इनकी सारी आ गए। किस्मतों को अल्लाह ही जानते हैं। बहरहाल हुजूर ने फरमाया कि इसमें बकरी में आज भी इनकी सारी होती है, तो बकरी पालने वाले में भी इसका असर आता है। इसीलिए तो हदीस में मना फरमाया गया कि देखो और मेरी उम्मत के लोगों, दरिंदे की खाल इस्तेमाल मत करो। दरिंदे की खाल चाहे बदायत की हुई हो, बदायत की जाओ, खाल दरिंदे की इस्तेमाल नहीं करो। शेर की खाल है उससे बैठे हैं, चीते की खाल से बैठे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुमानात फरमाई है दरिंदे की खाल इस्तेमाल करने से, चाहे वो पास कर लिया गया है उसको, बदायत दे दी गई हो, फिर भी मंगू है। वजह इसकी है कि क्योंकि वो दरिंदा है, दरिंदे की खाल है, उसकी दरिंदगी का असर आ जाएगा उसको इस्तेमाल करने में। आप उसमें बैठेंगे उसके भी असरात आपकी तबीयत पे पड़ेंगे। एक मुर्दा दरिंदे की खाल उबूर में मना फरमाया, वजह इसके अंदर भी असरात होता है। अंदाजा लगाए कि जब इन चीजों में जानवरों के असरात हैं तो अल्लाह वालों की सोबत का क्या कहना, और घोड़े पालने वाले में तकबूर होता है, क्योंकि घोड़े में तकबूर तबाही तौर पर है, इसलिए उनमें उसकी साथ रहने की वजह से उसके असरात आ जाते हैं। ये तो जानवरों के असरात हदीस में बयान फरमाए गए। हज़रत अल-क़मर रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ताबिई हैं, वो दमिश्क में पहुंचे एक जगह मस्जिद में, और जाकर उन्होंने दुआ की, अल्लाहुम्मा यस्सिरली जमी सालिहा। दूसरे प्रदेश में आए थे अपने वतन को छोड़कर, तो वहाँ जाकर दुआ की कि अल्लाह मुझे किसी अल्लाह वाले की सोबत नसीब फरमा दीजिए। सवाल यह है ये सोबत मुझे नसीब फरमाइए। ये दुआ उनकी ऐसी कबूल हुई, वो कहते हैं कि लाले का शेर है कि अगर साबित हैं आप दोस्त इकरारे मोहब्बत में, तलब खुद कर लिए जाएंगे दरबार मोहब्बत में। अगर साबित हैं आप दोस्त इकरारे मोहब्बत में, तलब खुद कर लिए जाएंगे दरबार मोहब्बत में। आप खुद हैरान होंगे कि कैसे अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, क्या निजाम चला अल्लाह का, मैं यहाँ पहुँच गया। अगर आप साबित हैं, सच्चे हैं अल्लाह वाला बनने में, मुत्तकी बनने में आपका सच्चा इरादा है, तो अल्लाह सुभानहू व तआला ऐसा निजाम चलाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तलब खुद कर लिए जाएंगे दरबार मोहब्बत में। राह तलब में जज्बा कामिल है जिनके साथ, खुद उनको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। तो उन्होंने दुआ की अल्लाह ने उससे ली जली संसालिहा, और ये दुआ करके फायर भी हुए थे बराबर में एक बुजुर्ग शख्सियत कोई साहब आके बैठे, और ऐसा रोग उनका ऐसा रोग था कि दूसरों से पूछा भी कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि हाजा साहब रसूलुल्लाह, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साहबी हैं, हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला ने। तो हज़रत अल-क़मर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उनसे अर्ज़ किया हज़रत अबू दर्दा से सलाम दुआ करके, हज़रत मैंने अभी दुआ मांगी थी अल्लाह ने यस्सिरली जलीसन सालिहा, और अल्लाह ने आपसे मेरी मुलाकात करवा दी। अभी मैंने दुआ मांगी और ऐसी कबूल हुई कि अभी अल्लाह ताला ने आपसे मेरी दुआ करवा दी। सहाबी की सोबत मुझे मिल गई है, हुजूर के गुलाम की सोबत हासिल हो जाए, इससे बड़ी और क्या नेमत है। मैं यह समझना चाह रहा हूँ कि देखो ताबूत है वो दौर सुनहरा दौर है। हुजूर ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सम्मल लदीना यलूना सम्मल लदीना यलूना, सबसे बेहतरीन दौर तो मेरा दौर है, इससे अच्छा दौर में कभी आया ना आएगा। खैरुल कुरून करनी, सबसे अच्छा जमाना मेरा जमाना है, जिसकी तशरीह अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं फरमाई है कि वो 63 साल जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहने का फरोज रहे, वो 63 साल इससे पहले ना जमीन में देखे ना आसमान में देखे, ना इसके बाद जमीन आसमान देख सकेंगे। और बाज़ उलमा ने यूं फरमाया है कि नुकसान तो होते रहे हैं होते रहेंगे, कभी कोई जलजला आ गया, इसमें जाने जाया गई, माल जाया गया, कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन इस सबसे बड़ा नुकसान इस उम्मत को जो हुआ है वो इससे बेहतर और कोई नुकसान ना हुआ ना होगा वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से पर्दा करना है। तो इसकी मुख्तलिफ ताबीरात खैरुल कुरून करनी भी थी, मुख्तलिफ अल्फाज ने उलमा ने बुजुर्गो ने, मेरा जमाना सबसे अच्छा जमाना सुम्मा लदीना यलूनहुम, उसके बाद मेरे सहाबा का जमाना सुम्मा लदीना यलूनहुम, उसके बाद ताबेईन का जमाना, ये तीन जमाने बेहतरीन जमाने हैं, इसके बाद आपने कोई फिक्र नहीं फरमाया। मालूम हुआ इसके बाद बस कितने का आजमाइशों का जमाना जिसने हमें रहा था, अब कितने हैं आजमाइशें हैं जगह जगह, तरह तरह की इब्तलाहत और आजमाइशें हैं, ये वो वक्त है, वो खैरुल कुरून, वो तीन जमाने जो आपने फरमाए वो तीन जमाने तो सबसे गुजर चुके, सबसे गुजर, हमारे हजरत फरमाते थे सूरज को डूबे हुए जितनी देर गुजरती जाती है अंधेरा उतना बढ़ता जाता है। फिर हजरत ये मिसाल देखे फरमाते थे नबूवत का सूरज डूबे हुए 1400 साल 1450 साल बीत चुके, अब बताइए कितने अंधेरे फैल जाएंगे, कितने के गुमराहियों के आजमाइशों के कितने अंधेरे फैल चुके होंगे। तो ये वो वक्त है, ऐसे वक्त में इस आजमाइश के वक्त में अगर सही रहनुमा सही रहबर या जिसको शौक कहते हैं वो मिल गया तो बहुत बड़ी नेमत है, वरना खतरा है आजमाइश में मुबतला होने का, कुत्ते में मुबतला होने का। तो उस दौर के ताबेईन ने भी अपने आप को सोमत से मुस्तगनी नहीं समझा, वो भी दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा यस्सिरली ज़लीफ़न सालिहा, और उनकी दुआ भी कबूल हो रही है। हम भी मांगे अल्लाह से, बस मांगना चाहिए अल्लाह से, मांगे अल्लाह मांगने से, मांगने वाला महरूम नहीं रहता, मांगने वाला महरूम नहीं रहता, और डरने वाले की हिफाजत की जाती है। अल्लाह सुभानहु व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और एक कुछ ऐलान ये करना है कि हमारे यहाँ कुछ दिन पहले कुछ उलमा कराम तशरीफ लाए थे कराची, जो नकानी भी है दूसरे शहरों से भी, उन्होंने आकर ये बात रखी थी, हजरत से भी मिले थे, ये बात रखी थी कि हज का मौका आता है साल में एक मरतबा, और एक बड़ी तादाद हजाज की हमारे यहाँ से जाती है, लेकिन उससे कहीं कई गुना बड़ी तादाद उम्रे में जाती है। तो हज से तो अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पर जब हज हो रहा होता है, हज का बनाना होता है, तो तरबियती नशिस्तें होती हैं और उलमा के बयान होते हैं मुख्तलिफ मसाजिद में और दूसरी जगह पर, हज के उनवान से लोगों को दिया जाता है और उनको तरबियत दी जाती है, मॉडल बना के उनको दिखाया जाता है कि ये और इस तरह हज करना चाहिए, इस तरह ज्यारतें करनी चाहिए, ऐसे तलाश करना चाहिए, ये सारी बातें उनको बताई जाती हैं। लेकिन उम्रा जो सारा साल तकरीबन अब तो तकरीबन सारा साल जारी रहता है, अब जो नई जो पॉलिसी आई है उसके तहत तो तवील अर्से तक ये तकरीबन सारा साल ही जारी रहेगा। तो और तकरीबन उन्होंने उनके मुताबिक 9.5 लाख अफराद सिर्फ पाकिस्तान भर के जाते हैं उम्र के लिए साल भर में, ऐसा था यदि तकरीबन 10 लाख अफराद उम्र के लिए जाते हैं वहाँ से मुख्तलिफ़ औक़ात में, तो इसकी कोई तरबियत और इसका कोई इंतज़ाम हमारे यहाँ नहीं है कि इन जो उम्र पर जाने वाले हैं इनको कौन तरबियत दे, कौन सिखाए कि ये किस तरह उम्र करना चाहिए, कैसे तलाश करना चाहिए, सही कैसे करनी चाहिए, इसका कोई इंतज़ाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग इसको कुछ शुरू करें, तो हजरत ने फरमाया कि भाई इसको वापिस शुरू करना चाहिए, क्योंकि असल तो जो मुआवजा होगा वो तो उलमा से होगा, उनसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया, तुमने कितना दीन सिखाने की कोशिश की, क्या खाली देखते रहे थे ये लोग गलत कर रहे हैं, गलत करने दिया जाए उनको, तो इससे तो उनका आग्रह बजाय उसके जो वो कुछ वहाँ से लेकर लौटे और नुकसान करके लौटे हैं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता नहीं। हमारे साहब आकर बता रहे थे, साहब ने बताया उन मुझसे साहब ने आकर पूछा भाई अल्लाह ताला का मज़ार कहाँ है, जरा ये बता दिए अल्लाह ताला का मज़ार कहाँ है, बैतुल्ला को ये कह रहे थे, और वो जो वहाँ जो वो है क्लॉक टावर है ना जो लंबी, उसको उसको देख के वो एक साथ में खड़े होकर दुआ कर रहे थे, तो भाई ये दुआ करने की जगह वो बैतुल्ला इधर कुछ खास लोग हैं और आज वहाँ खड़े होकर उसी सामने दुआ कर रहे हैं वो क्लॉक टावर के सामने, वो तो कयामत की निशानी है। إذا رأيت نفسك قد بعدت بعدت تزاول وساوى دماؤه رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أظلك. جب تم یہ دیکھو کہ مکہ کے پیٹ میں راستے بن گئے، حضور نے فرمایا مکہ کے پیٹ میں راستے بن گئے، یہ محدثین کو سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ جملہ، آج تک پچھلے دور کے محدثین سمجھ ہی نہیں سکے تھے اس جملے کا مطلب کیا ہے، لیکن تم نقل کرتے رہے اس حدیث کو، आज हमारे पास पहुंची तो हम समझ गए कि मक्का के पेट में रास्ते आप गड्ढा से मक्का गए, कम से कम 3 सुरंगे आएंगी रास्ते में, उनसे आपको गुजरना ही गुजरना है, ये है मक्का के पेट में रास्ते। जब ये बन गए और मक्का की इमारतें पहाड़ों से बातें करने लगे, मैं समझ लिया कयामत बहुत करीब है। तो मैंने यह चीज़ तो कयामत की अलामत है जो आप खड़ी हुए हैं, वो जो सामने वो जबल अबू खुदा, ये एक रिवायत के मुताबिक ये दुनिया का पहला पहाड़ है जिसको अल्लाह ने यहाँ रखा है, पहला पहाड़, बाकी पहाड़ बाद में रखे गए पैदा किए गए, ये पहला पहाड़ है जिसको पैदा किया गया, और यही वो पहाड़ है जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहकर ऐलान फरमाया अवाज़ के नासिबुल हक, लोगों को हज का ऐलान किया है, भाई हज अल्लाह के घर की ज्यारत के लिए आए, वो इसी पहाड़ को करके किया था, वो आज भी मौजूद है सामने कई के जो जगह है उसके सामने आपको पहाड़ नजर आएगा, ये जबल अबू खुदा है, और यही वो पहाड़ है जिस पर सबसे कमर का मौजूदा है, वो कई बहुत तारीफी पहाड़ है, तो आपने इशारा फरमाया चांद की तरफ, मुश्री जी ने मक्का में कहा था चांद दो टुकड़े कर दें हम आपको रसूल मान लेंगे, अल्लाह का नबी मान लेंगे, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली से इशारा फरमाया, चांद के दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा जबल अबू कुबैस के उस तरफ चला गया, एक इधर रह गया, जबल अबू कुबैस बीच में था, दोनों टुकड़े उधर बाएं बाएं हो गए, वो यही पहाड़ है। तो इस जबल अबू कुबैस से भी ये क्लॉक टावर होता है, तो ये तो हुजूर की बात सच्ची साबित हो गई, देखो ऐसा होगा, ये ऐसा है जैसे हुजूर ने ये जमाना देख कर फरमाया, कि मैं देख रहा हूँ जैसे आंखों से देख रहा हूँ, मक्का के पेट में रास्ते बन गए, उसकी इमारतें पहाड़ों से ऊँची हो गए, तो समझ लो अब जमाना करीब है, तुम्हारा समझ करीब आ गया, बस अब अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह की से बनने की कोशिश करो, देख लो गुलामतें जाहिर हो गई है, अब हम क्या चाहिए, तो भाई ये कैसे थोड़ी हो गई, अब जो आप हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, अब ये मनाजिर अब देखने को मिलते हैं, और लोग बैतुल्ला की तरफ से खड़े होकर और उसको देख रहे होते हैं, इधर बैतुल्ला उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, उस तरफ ध्यान वो वहाँ से जुमले आते हैं आते हैं दुआएं वो बस देखते रहते हैं, एक तमाशा चल रहा है और इधर बैतुल्ला है उससे तवज्जो हट गई। दुख होता है ये देख, बहुत दुख की बात है। ये जो मदीना जा रहा है अपने हज और उमरा जाया कर रहा है, उसको कौन कौन इसका जिम्मेदार है? और लाखों रुपये भी ज़ाया हो रहे हैं, वक्त भी ज़ाया हो रहा है और उनके अमाल भी ज़ाया हो रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अपना और ये समझ रहे हैं कि हम हाजी हो गए। अभी एक दिन मैं हज से वापस आ रहा था, इसी सफर की बात बता रहे सजर का रंग रास्ते में आया, हाजी बन चुके, हाजी बनकर आ रहे हैं और सजर का वक्त आया, चंद आदमी खड़े हुए उन्होंने नमाज पढ़ी, बाकी सब पूरा जहाज मीठी नींद सो रहा था। ये हमारा हक कबूल हुआ है, होना तो ये चाहिए था कि जगह न बस्ती वो कहते भाई हमें भी नमाज पढ़नी है, हमें भी नमाज पढ़नी है सजर की, औरतें कहती हमें भी नमाज पढ़नी है, कोई भी किसी के ऊपर कोई कोई झूम रहेंगी, आजान दी गई बाकायदा हमारे साथी ने अजान दी कि भाई अजान होनी चाहिए, उसके बाद जमात हो, जमात से नमाजें पढ़ी गई, बहुत सारी जमातें हैं लेकिन वो चंद लोग थे, जहाज तो बहुत बड़ा था, चंद लोगों ने नमाज मुक्ति बार लोगों ने नमाज पढ़ी, गिनती के लोगों ने इतना बड़ा खरीदा वो जाया कर दिया, थोड़ी देर में सूरज निकल रहा है तो जहाज चल रहा था आगे की तरफ जा रहा था, जहाज ये देखे कि हम क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा मजमा जाता है अपना नुकसान करके आता है, तो हमें फरमाया भाई इसका यूँ करो कि इसकी ये इसकी तरबियत का इंतजाम आना चाहिए, तो हमने ये सोचा अगले इतवार से इंशाल्लाह अगले इतवार से किसी इस बारे में कुछ बातें आप कर दी जाए, क्योंकि अब ये उम्र के अखबार लोगों के शुरू होंगे और वीजे खुल जाएंगे और लोग उम्र के लिए जाना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए आज अगर आपके इल में जो है जो लोग जाना चाहते हैं उम्र के लिए उनको इसकी इतला करना है कि अगले इतवार को यहाँ आ जाए मगरिब के ईसा, कुछ देर बात कर लेंगे और फिर उसके बाद ये अपना उम्र का उम्र के बारे में कुछ जरूरी बातें घर से लेकर और घर वापसी तक कुछ बातें मुख्तसर तौर पर बता दी जाएंगी। आगे इंशाल्लाह इरादा यही है कि तफसीली नसीबतें हुआ करेंगी, आप दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला जो हम ये काम करने जा रहे हैं अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद फरमाए, और जो तालीब साजिश हैं जो लोग चाहते हैं हमारा उमरा सही हो जाए उनको हमारे पास भेज दें ताकि हम उनको सही जो मनासिक हैं उम्र के और जो अरकान हैं उनकी सही तरीके से उनको रहनुमाई कर सकें, बता सकें कि इस काम को इस तरह करना चाहिए, तो इसके बारे में जो जो जाना चाहते हैं आपके इल्म में हो तो उसको खुला कर दें, खवातीन का भी इंतज़ाम होगा इंशाल्लाह, यहाँ बारात में खवातीन का भी इंतज़ाम है, खवातीन को भी ला सकते हैं, और आइंदा हमारा इरादा यही है कि इसको मजीद वसत दी जाए, हज के मौके पर भी उम्र के मौके पर भी यहाँ नशिस्तें हुआ करें और बाकायदा मॉडल बनाकर हम कोशिश कर रहे हैं कि मॉडल बनाए जाए लकड़ी के और उससे मॉडल के जरिए हम वजाहत करेंगे इस तरह इस्तेमाल किया जाए इस तरह तैयार किया जाए, अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अदा करता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगले इतवार को मगरिब के ईशा के दरमियान जैसे यहाँ होता है ये नसीब रहेगी इंशाअल्लाह।